Welcome to this Monday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember, listeners, that we do not address company-specific queries. You can call us with your queries on 2331 44 44 2342 1050 and 2331 0464. Listeners who are calling us from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Sonu Sood.
धन्यवाद अनुभा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. इस कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं. 2331 44 44 2342 1050 और तीसरा नंबर है 2331 0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्लैरिटी के साथ हम एक दूसरे को सुन सकें. प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ अमन अग्रवाल. नमस्कार अमन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी.
थैंक यू सोनू. Benchmark domestic equity indices end week's first trading session in negative territory. Sensex drops over 570 points. Nifty closes at 24,681. India's industrial production registers 1.5% growth in June. And crude oil prices rise over 1%. Brent crude trading at $69.44 per barrel.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सप्ताह के पहले दिन गिरावट पर हुए बंद. सेंसेक्स 570 अंकों से अधिक गिरा. निफ्टी 24,681 पर हुआ बंद. भारत के औद्योगिक उत्पादन में जून के दौरान 1.5% की आई वृद्धि. और कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक का आया उछाल. ब्रेंट क्रूड $69.44 प्रति बैरल पर था. शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में 0.5% से अधिक की गिरावट पर बंद हुए. ये गिरावट अधिकांश क्षेत्रों में हुई बिकवाली के बीच आई. पहली तिमाही के कंपनी परिणामों और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में जारी अनिश्चितता के कारण बाजार की धारणा कमजोर बनी रही. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.7% की मंदी से 572 अंक कम होकर 80,891 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.63% के नुकसान से 156 अंक कम होकर 24,681 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार पर नजर डालें तो यहां भी रुख गिरावट का था. बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.7% से अधिक नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.3% की गिरावट दर्ज हुई.
And Sonu, before I give the details, let me also, our first listener is already online with us, Atanu Saha from Kolkata. But Mr. Saha, I would request you to be a little patient. Let's first hear what the market, how the markets behave in detail, and then we will take your call. So the benchmark domestic equity indices today ended the week's first trading session with losses of more than 0.5% amid sell-off across most sectors. Market sentiment remained weak due to first quarter earnings and ongoing uncertainty in the India-US trade talks. The Sensex at the Bombay Stock Exchange dropped 572 points or 0.7% to close at 80,891. The National Stock Exchange's Nifty 50 declined 156 points or 0.63% to settle at 24,681. Broader market indices at the BSE also closed lower. Mid-cap index lost over 0.7% and the small-cap index fell 1.3%.
कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयर आज गिरावट में रहे. सबसे अधिक नुकसान में रहने वाले शेयरों में 7.5% की तीव्र गिरावट के साथ कोटक बैंक सबसे ऊपर था. बजाज फाइनेंस में 3.6% से अधिक नुकसान दर्ज हुआ और भारतीय एयरटेल का शेयर 2.3% से अधिक की गिरावट पर बंद हुआ. सबसे अधिक बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में 1.2% वृद्धि के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, 1% बढ़त के साथ एशियन पेंट्स और 0.8% तेजी के साथ ICICI बैंक सबसे ऊपर रहे.
In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors ended down. In the top laggards, Realty tanked over 4.1%, Telecommunications slipped more than 1.5%, and Capital Goods fell almost 1.5%. Among the top gainers, utilities as well as FMCG added over 0.1% each. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,881 companies declined. Shares of 1,256 companies advanced, while shares of 162 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 57 companies hit their 52-week high, while 62 hit their 52-week low.
और रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कमजोर होकर 86.66 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. महीने की समाप्ति के दौरान आयातकों के बीच डॉलर की मांग बढ़ने और घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का रुख रहने के बीच रुपए में ये गिरावट आई. छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 98.24 पर था. और अतानु जी हमारे आज के पहले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से, हमारे रेगुलर कॉलर. अतानु जी आपका बहुत बहुत स्वागत. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
गुड इवनिंग सर. माय क्वेश्चन इज रेनफॉल ऑलमोस्ट मॉडरेट, सो डू वी एक्सपेक्ट ए रिकवरी इनसाइड कैपिटल मार्केट?
Yeah, you see, as far as rainfall is concerned, the moderate rainfall has nothing to do with the stock market in particular. Certainly, the food and the IPP numbers which have come up have fairly been bullish. The inflation is on a lower end, which needs to pick up a little for markets to do. And that's why RBI has been putting in more money by cutting rates so that more money can come in the market and the inflation push could take place, which is there. The markets are performing randomly as of now, which they should be, going up a little, going down a little. There is no major correction which is expected. And the macroeconomic situation of the country is fairly bullish and strong. And as a result, we should see a better result. As far as even with the US trade talks, which are in discussion and always have been a fear factor, India particularly has nothing to fear in specific. However, the interest has been told by Piyush Goyalji, the Minister for Trade and Commerce, has been clear that the interest of India would be taken care in whatever deals we do. And the relationship which India and US is having is fairly positive, as against some of the other countries where these are more disturbing, even where the talks are going on as of today, like China or Vietnam or others, where this is a big problem, not for India. So I feel the markets would be stable and going in the right direction.
And now let's take the next call coming in from Delhi. Our listener Lakshman is with us. Lakshman, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
हेलो
जी, अपना सवाल पूछें.
मेरा सवाल था, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरे को एक पेंशन मिलती है ईपीएफ की 1723 रुपए, और अखबारों में पढ़ते हैं कि वो 7500 रुपए हो गई है. क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, एक? और दूसरा, मैं कंसल्टेंसी में काम करता हूँ, तो क्या उससे वो 12 लाख वाली मेरे ऊपर लागू होती है योजना कि नहीं होती है, क्योंकि मुझे 10% काट के फ्लैट 10% काट के पैसा मिलता है?
आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा. जहाँ तक पेंशन का है, वो जब भी इफेक्टिव होगा तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिलेगा उसका ये बेनिफिट. नॉर्मली पेंशन के केस में इमीडिएटली आपको देखने को नहीं मिलता है, पर सरकार जब भी देती है तो जब से वो इम्प्लीमेंट होता है तब से आपको एरियर्स मिलके साथ मिलता है, पहली बात. दूसरी बात, जो आपने बात करी, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप अपनी इंडिविजुअल रिटर्न भरते होंगे एज एन इंडिविजुअल, अगर आप कंपनी की फॉर्म में भरते हैं तो भी कंपनी का रेट लगेगा, अगर आप इंडिविजुअल की फॉर्म में भर रहे हैं तो आप 12 लाख वाली कैटेगरी में अगर आप न्यू टैक्सेशन प्रणाली के अंदर हैं तो उसमें आ सकते हैं। जो आपने 10% कटने की बात करी वो TDS होता है, वो जो भी कंपनी आपको कंसल्टेंसी असाइनमेंट देगी वो 10% ही काटेगी, वो आपको बाद में अपने रिटर्न में क्लेम करना होगा और आपका अगर TDS कम बैठ रहा होगा तो वो आपको रिफंड में मिलेगा।
लेते हैं अगली खबर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की औद्योगिक वृद्धि मापने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP मई के बढ़े हुए संशोधित 1.9% के मुकाबले जून में कम होकर 1.5% पर दर्ज हुआ। फैक्ट्री उत्पादन पिछले वर्ष जून में 4.9% की दर से बढ़ा था। IIP में शामिल 3 प्रमुख क्षेत्रों में से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मई की 2.6% के मुकाबले बढ़कर जून में 3.9% हो गई। हालांकि खनन उत्पादन में 8.7% की गिरावट आई और बिजली उत्पादन में भी 2.6% की गिरावट दर्ज हुई। इस बीच असम से हमारे साथ हमारे श्रोता सुखारी राय जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में, अपना सवाल पूछिए।
मेरा बिटिया के सुकन्या खाता है और रिटर्न कितने दिन मिलता है, कितने साल के बाद मिलता है?
देखिए जी, जो सुकन्या खाता है उसमें जब वो लड़की आपकी बालिक हो जाएगी, मतलब 18 साल से ऊपर हो जाएगी, उसके बाद उसको वो पैसा मिलेगा। तब तक आपको जोड़ना होगा उसके अंदर, उसमें जो है आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, वो उसके लिए रहेगा और वो उसको फिर उसमें जो है बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। तो इसमें ये नहीं होता कि कुछ सालों के लिए, जैसे कुछ खाते होते हैं PPFA या कुछ है, उसमें कुछ सालों का हिसाब किताब होता है, इसमें 18 साल बच्चे के होने तक का हिसाब किताब रहता है।
और आइए अब अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.5% से अधिक बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.4% से अधिक बढ़त दर्ज हुई और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक को 0.1% से अधिक फायदा हुआ। दूसरी ओर जापान का निकेई सूचकांक आज लगभग 1% लुढ़क गया और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.4% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां के बाजारों में भी रुख मिला जुला था। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 40 0.3% की बढ़त पर था और जर्मनी के डैक्स में कारोबार लगभग सपाट था। हालांकि लंदन का फुटसी 100 0.1% से अधिक के नुकसान पर था। जापान के सूचकांक में आज 1% गिरावट आई है। हाल में हमने देखा था जब US जापान डील हुई तो जापान में खासी तेजी आई थी। So, आपको लगता है कि भारतीय बाजार में भी शायद वैल्यूएशन ज्यादा है जिसकी वजह से हम प्रॉफिट बुकिंग पर काफी बल देख रहे हैं और जो गिरावट हम अभी हाल में देख रहे हैं?
नहीं, मेरे विचार में अभी कोई ओवर वैल्यूएशन भारत में नहीं है। अमेरिका और जापान में एक टैंडम रहता है बिकॉज जापान की इकोनॉमी काफी हद तक अमेरिका पे डिपेंडेंट रही है। जब से एटॉमिक बॉम्ब गिरा है उनकी जो डिफेंस है वो भी काफी हद तक US के ऊपर डिपेंड रहा है, ट्रेड है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इस वजह से उनका टैंडम जनरली US के साथ चलता है। पर इंडिया के अंदर अभी कोई ऐसा ओवर वैल्यूएशन नहीं है। थोड़ा बहुत जो करेक्शन आना था पिछले 2-3 महीने में, हमें वो करेक्शन देखने को मिल गया है। अब ये देखने की बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हम बढ़ोतरी की तरफ लेके जा पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टॉक मार्केट भी उस ग्रोथ की टैंडम में चलेगी या नहीं चलेगी। और इसी वजह से भारत सरकार ने भी कहा और RBI ने भी इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं ताकि लोग खर्चे की तरफ, कंजम्पशन स्पेंडिंग की तरफ जाएं। बट क्योंकि ये वॉर की स्थिति भी बाहर की तरफ नजर आ रही है, ऑयल का भी प्रॉब्लम रहा है और अभी अलग अलग देशों में हम सारे रीजन्स में देखें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वॉर छिड़ी हुई है, तो जब न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो उसको भी दिखाते हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं हम, तो जब आदमी को ऐसा डर बैठ जाता है तो अनिश्चितता बहुत आता है, तो आदमी खर्चा भी कम करने लग जाता है कि कल को क्या होगा तो खर्चा नहीं, तो इसलिए कंजम्पशन स्पेंडिंग जैसे सरकार चाह रही है वो मार्केट में नहीं आ पा रही है और इस वजह से हमें ग्रोथ नहीं हो पा रही।
आई वांट टू आस्क यू हियर दैट यू नो यू मेंशनड RBI एंड द रेट कट्स, वी आर देयर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बाय यू नो द बाय मंथली मीटिंग ऑफ द RBI टू नेक्स्ट मंथ, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज द CPI द रिटेल इन्फ्लेशन हैज बीन गोइंग स्टेडली डाउन, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू नो दिस मीटिंग?
You see,
are we looking at another rate cut?
Yeah, given the trend which the government is wanting in terms of consumption spending, there may be another rate cut, but that, in my opinion, personal opinion, may be disastrous for an economy, because we need inflation which needs to be there, but then we also need to see the fact that savings is taken care of.
Right.
And as I said, currently we're at a brim where people are not willing to spend because of the fact that there is too much of an uncertainty. And if this way RBI keeps going it down, you see, we have been able to keep it stable for almost 2.5-3 years,
mm-hmm.
the previous governor in-house, and there was no sudden need of it, except for this consumption spending growth. So given this fact, it is important that the overall economy is looked upon and RBI takes a decision consciously, not to, just looking at one factor, but as an overall economic.
Right.
And if we talk about central banks' meetings, then परसों ही अमेरिका का FOMC का भी अनाउंसमेंट आने वाली है. सो वो कितना एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगी कि वो बढ़ाते हैं, घटाते हैं अपना इंटरेस्ट रेट या नहीं?
देखिए जी, वो बहुत सालों से अभी कोशिश कर रहे हैं घटाने की, बट उनका इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो घटाने की स्थिति में नहीं है, और इसको देखते हुए अनसर्टेनिटी बनी हुई है. पर मेरे को उम्मीद है कि इस बार शायद वो थोड़ा घटाएं.
And before we take the next story, let me repeat the numbers that the callers can call us on. The numbers are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. We are waiting for your calls. Do call us up with your queries. Moving on, the United States and the European Union have finalized a comprehensive trade deal that places a 15% tariff on most EU goods entering the US. US President Donald Trump and EU Chief Ursula von der Leyen announced last night that they have reached a deal to end a transatlantic tariffs standoff and avert a full-blown trade war. More from our correspondent.
The agreement came as the clock ticked down on August 1 deadline for the European Union to strike a deal with Washington or face an across-the-board US levy of 30%. Mr. Trump told reporters the deal involved a baseline levy of 15% on European Union exports to the United States, the same level secured by Japan. The US president also said the European Union has agreed to purchase $750 billion worth of energy from the United States, as well as $600 billion more in additional investments in the country. Sanyukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
And before we take the next call coming in from Chennai, let me also tell our listeners that the United States and China are having a new round of trade talks in Swedish capital Stockholm today. The negotiations will be led by U.S. Treasury Secretary Scott Bessent and China's Vice Premier He Lifeng. The world's two largest economies could agree to extend their current trade truce by another 90 days. The existing truce is scheduled to expire on the 12th of next month. During the truce, both countries agreed to temporarily reduce tariffs on each other. And now let's take the call. The call now coming in is from Kolkata and not from Chennai. And Pankaj is calling us from Kolkata. Pankaj, welcome to Market Mantra. Please ask a question.
Hello.
Ji, aap sawal puchhe?
Haan, ji, main ye prashn puchna tha ki जैसे बैंक में मैं एफडीआई कराना चाह रहा हूं, तो क्या ये सही समय है बैंक में अभी करने का? क्यों वैसे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक का थोड़ा कम है, तो क्या अभी आशा कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में मतलब फिक्स डिपॉजिट करने में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ के मिले, उसके लिए क्या मुझको वेट कर देना चाहिए या अभी एफडी कर सकते हैं?
देखिए जी, जब आपको अभी जब भी एफडी करनी हो वो आप तब कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत पड़े तो कुछ समय के बाद आपको लगे 1-1.5 महीने में, तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, उसको ब्रेक करके दोबारा आप एफडी बना सकते हैं. पर यह चीज़ देखना जरूरी है कि आपको सिंपल रूल है कि अगर इन्फ्लेशन घट रहा है तो आपके रेट्स घटते हुए नजर आते हैं. स्पेसिफिकली जब आरबीआई या सेंट्रल बैंक रेट कट करता है तो बैंक्स गिराते हैं उसको, जब वो बढ़ाएगा तो इसी तरीके से रेट बढ़ेंगे. अभी जो आसार लग रहे हैं उसमें हमें कहीं रेट बढ़ते नजर नहीं आ रहे. इसमें भी कुछ बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, वो बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, वो काफ़ी अच्छा रेट इस समय 8% के आसपास, 7.5-8% के आसपास दे रहे हैं, और उसको आप वहाँ पे एनकैश कर सकते हैं. और उसमें अगर लॉन्ग ड्यूरेशन करते हैं, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, 4-5 साल के लिए करते हैं, तो उसमें सारे बैंक थोड़ा रेट ज़्यादा देते हैं.
और अब हम रुकेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के लिए और फिर मार्केट मंत्रा जारी रहेगा.
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद.
अरे नो टेंशन,
करनी है तैयारी, NPS जरूरी है।
आज ही अपना NPS अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ENPS पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी प्रशासन ने पुष्टि की है कि जवाबी शुल्क लगाने की समय सीमा 1 अगस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। कल रात मीडिया से बातचीत में अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने समय सीमा बढ़ाने की किसी भी संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कोई अतिरिक्त ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाएगा और नया शुल्क 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। अब तक यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान ने इस समय सीमा से पहले ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और अब हमारे श्रोता चेन्नई से डेविड हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछे।
आई वुड लाइक टू नो दिस जीएसटी फॉर गोल्ड एंड डायमंड इज मच लोअर कंपेयर टू you know, the essentials where we land up paying very high up to 18% and higher. So what is the basis for ensuring that the GST is lower for gold, diamond and which is, you know, which should ideally be in a lower for essentials rather than for luxury items? May I know how this is computed by
Yes. Firstly, there is a committee which looks at this, the GST Council, which is primarily the ministers of all states, which are the members of that council, and then the secretaries of finance, who are the government officials referring to the state, and the tax department officials. Now, this committee actually looks at different products and commodities and then decides upon the rates which will be applicable. And as far as gold, silver is concerned in specific, these are commodities consumed by the common man also. So we should not forget large quantities of gold are actually consumed by people at large, even living on the streets, buying some of them. Small trodden houses, villages, everyone in the country, unlike United States or Europe, where, and middle class and above would typically end up buying gold and silver, which is not the case with India in particular. Secondly, the decisions of this is decided unanimously amongst this committee members and then taken into it. Like Arun Jaitley, who was the first finance minister for the GST Council to take it forward, had clearly said that they would like to bring in fuel also within a span of 3 to 4 years, but they have not still been able to do it, primarily because the minister councils have not agreed to the fact, because there's a huge tax revenue which states earn out of fuel. And that's where, these decisions are taken by the committees.
And let's go over now to Delhi, where from where Veer Pandita is calling us. Mr. Pandita, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Good evening. Actually, my question is that we have एक ऑर्नामेंट के जो गोल्ड ऑर्नामेंटल है जो काफी पुराना है, मतलब शादी का 20-25 या 30 साल पहले पड़ा हुआ घर में, अब वो यूज भी नहीं है उसका ज्यादा, वो ऑर्नामेंट कुछ टूटा फूटा भी है, मतलब यूजेबल नहीं है। तो मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि एक्सपर्ट से कि उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, मतलब व्हाट इज द मतलब वी कैन डिस्पोज उसको जी, रखना जी, भी जी, मुझे लग रहा है कोई ऐसा वो
समझदारी
नहीं है, बट
देखिए जी, कुछ चीजों की इमोशनल अटैचमेंट होती है, अगर आपको नहीं है तो आप उसको किसी भी गोल्ड स्मिथ के पास जाके आप उसको बेच सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। थोड़े बड़े गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे तो आपको हो सकता है लगे कि रेट कम मिल रहा है, बट वहां पे आपको सही अलंकन मूल्य आपको उसका मिल पाएगा, गोल्ड की क्वालिटी चेक करके वो आपको उसका रेट दे सकते हैं, और आराम से किसी भी गोल्ड स्मिथ के पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके किया जा सकता है।
गाजियाबाद से गौरव है हमारे अगले कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
नमस्ते सर, ये रिसेंटली एक आर्टिकल आए थे बड़े इकोनॉमिक्स के कि हमें बहुत बड़े इकोनॉमिक सेकंड वेव ऑफ रिफॉर्म की जरूरत है, तो व्हाट रिफॉर्म्स कैन बी एक्सपेक्टेड नाउ, बिकॉज देयर आर ऑफ रेड टेपिज्म स्टिल इन द गवर्नमेंट, और हमारी इकोनॉमी इसलिए स्लो है क्योंकि हमें अगर विकसित भारत बनना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा 8% तक तो चाहिए। तो क्या रिफॉर्म, किस रिफॉर्म की बात हो रही है? एग्रीकल्चरल तो फ्लेयर हो गया, लेबर रिफॉर्म हो सकते हैं, या कौन से रिफॉर्म?
देखिए जी, मेरे विचार में 2014 से इस सरकार ने रिफॉर्म्स के अलावा और कोई काम ज्यादा नहीं किया है। रिफॉर्म्स कर करके वो इकोनॉमिक ग्रोथ ला रही है, चाहे वो करेंसी के अंदर हो, चाहे वो लेबर मार्केट्स के अंदर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर हो, और जहाँ पे रिफॉर्म नहीं कर पा रही है वहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन किया है, ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया है और पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। और इसी के बेसिस पे हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो वाहवाही अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हिंदुस्तान की देख पा रहे हैं,
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। द नेक्स्ट कॉलर इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली, देव। मिस्टर देव इज कॉलिंग अस। मिस्टर देव, वेलकम टू द प्रोग्राम। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट।
सर नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं नेक्स्ट मंथ में मैं एफडी वेरी मैच्योर हो जाएगी, क्या मैं एफडी में ही बना रहा हूँ बैंक में, और या और एक चीज और मुझे क्लियरेंस चाहिए कि जैसे 91 के आसपास एक शेयर घोटाला हुआ था, क्या हम मार्केट में पैसा लगाने के लिए हम कितनी गारंटी रखें कि पहले जैसा कोई हमारे साथ कोई नुकसान तो नहीं हो पाएगा?
देखिए जी, पहली बात तो जहाँ तक आपने मार्केट की बात करी उसमें कोई गारंटी नहीं होती है, मार्केट में बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो इसलिए कोई गारंटी का चक्कर नहीं। जहाँ तक एफडी की बात है, आपके पास एफडी का ऑप्शन है, उसके अलावा जो है आपके पास आरबीआई के बॉन्ड्स हैं उनका ऑप्शन है, उसके अलावा पीपीएफ का ऑप्शन है, इसलिए से 3-4 काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास इन्वेस्ट करके लिए। पर ये आपको देखना है कि आप कितने समय तक उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको छोटे ड्यूरेशन के लिए करना है तो एफडी में टिकिए, नहीं तो इन बॉन्ड्स में जा सकते हैं।
Let's move on to commodities. Crude oil prices rose over 1% today as investors assessed a trade deal between the United States and the European Union. Brent crude was trading over 1.4% up at $69.44 per barrel, and WTI was also trading over 1.5% up at $66.15 per barrel when reports last came in. Moving on to gold, silver in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading nearly flat at 98,380 rupees per 10 grams, and silver was trading at 0.1% down at 1,13,240 rupees per kilograms a short while ago.
Multi-commodity exchange में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 0.06% बढ़कर 97,881 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। समय समाप्त हो रहा है, हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्साह के साथ पार्ट लेने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices end week's first trading session in negative territory. Sensex drops over 570 points. Nifty closes at 24,681. India's industrial production registers 1.5% growth in June. And crude oil prices rise over 1%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
Namaskar. Market Mantra.